नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। साझा प्रयासों के माध्यम से दोनों देश शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में योगदान जारी रखेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ वार्ता के बाद यह घोषणा की। दोनों देशों ने खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की तलाश करेंगे।
हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के सम्मान में भोज का आयोजन किया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अवसंरचना, डिजिटल सहयोग, शिक्षा अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिन के दौरे पर ओडिशा जा रही हैं। राष्ट्रपति राउरकेला में सार्वजनिक समारोह में तारामंडल और विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन करेंगी। वे राउरकेला में जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमान तथा नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आयोजित कर रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, जीतन राम मांझी, जगत प्रकाश नड्डा और शिवराज सिंह चौहान भी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बल देकर कहा है कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चुनाव प्रबंधन अधिकारियों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि चुनाव भयमुक्त, हिंसामुक्त और किसी भी तरह के दबाव से मुक्त होंगे। तमिलनाडु में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगत दल तथा कोलकाता के जोड़ासांको में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 दिन की जर्मनी यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। उत्तराखंड में आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की तीर्थयात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट कल खोले जाएंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाए। तिलक वर्मा ने केवल 45 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात टाइटंस की टीम 15 ओवर और 5 गेंद में 100 रन पर ही सिमट गई। मुंबई के लिए अश्विनी कुमार ने 4 विकेट लिए। टूर्नामेंट में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।